ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत् नास्तवयेष्वदेशो नित्यं भगवदसेवया भगवद्योत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा है चौथा स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 47। तत्रां अवशिष्टां ये वृक्षा भीता दुहितरं तदा क्या उजस्र ते प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तथा उजरस्ते प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उजसृष्टे प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उजारुस्ते प्रचेतोऽव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तथा उजसृष्टे प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तथा उजरुस्ते प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उजरुस्ते प्रचेतव्या उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उजसृष्टे उपदिष्टा स्वयंभुवा। तत्रावशिष्टये वृक्षा भीता दुहितरं तदा Ujasuste Prachetabhya Upadishta Sayambhuva Tatravasishtaye Vriksha Vidadu Hitaram Dada Ujasuste Tadavasishtaye Vriksha Vidaduhi Taram Tada Ujaraste Prachetabhyo Tadra Vaha Avasishta Shesh Bache Hue Ye जो वृक्षा वृक्ष भीता भयभीत दुहितरम अपनी कन्या को तदा उस समय जसो लाकार दे दिया ते उन्होंने प्रचेतों को उपदेष्टा उपदेश पाकर स्वयंभुवा ब्रह्मा द्वारा अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद बचे हुए वृक्षों ने प्रचेतों से डर कर ब्रह्म की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। तत्पर्य इस अध्याय के 13वें श्लोक में वृक्षों की कन्या का उल्लेख हुआ है। यह कन्या कंदु तथा प्रमलोच से उत्पन्न हुई थी। प्रमलोचा अप्सरा इस शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत स्वर्गलोक चली गई। शिशु को रोते देखकर चंद्रलोक के राजा को उस पर दया आ गए और उसने उसके मुंह में अपनी अंगुली डालकर उसके प्राणों की रक्षा की। वृक्षों ने इस कन्या का पालन पोषण किया और जब वो बड़ी हो गई तो ब्रह्म के आदेश से उन्होंने उसे लाकर प्रचेतों को पत्नी रूप में सौंप दिया। इस कन्या का नाम मरीषा था, जैसे कि अगले श्लोक में व्याख्या की जाएगी। वृक्षों के प्रमुख देव ने लाकर कन्या सौंपी। इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी का कथन है, वृक्ष तदाधिष्ठा त्रिदेवता। वृक्षों का अर्थ उन वृक्षों का अधिष्ठात देव है। वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है कि जल का एक अधिष्ठात देव होता है। इसी प्रकार वृक्षों का भी एक अधिष्ठात देव होता है। प्रचेतगण समस्त वृक्षों को भस्मसत किए जा रहे थे क्योंकि वे वृक्षों को अपना शत्रु मान रहे थे। प्रचेतों को शांत करने के लिए ब्रह्मा की राय से वृक्षों के प्रमुख देव ने पुत्री मरीषा को उन्हें सौंप दिया। ओम अज्ञान तिमिरंदस्या ज्ञानंदन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सायं रूपकधामयं ददाति सावदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरारघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागनाललिता श्रीविशगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिककान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणाममि हरे प्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च परीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर शिवाचरि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे रामो राम रामो हरे हरे। तत्रावशिष्टये वृक्ष भीता दुहित्रं तथा उजसुस्थे प्रचेतोभ्य उपदिष्ट स्वयं भुवा। बचे हुए वृक्षों ने प्रचेतों से डर कर भ्रम की राय से अपनी कन्या को लाकर तुरंत उन्हें दे दिया। तो यहाँ पर इस अध्याय में प्रचेतों के बारे में बात चल रही है और प्रचेतों ने बहुत सुंदर भगवान विष्णु की स्तुति की थी प्रेम के साथ। शिव जी की कृपा से भगवान श्री तो विष्णु उनके जो स्तव स्तुतियों से प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हो गया। साक्षात भगवान श्री विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए थे, उनका आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद तो और ये बहुत तो आनंद पूर्वक ये प्रचेतों ने उनका दर्शन किए थे, लेकिन कुछ समय के बाद अंतर्धान हो गए भगवान श्री विष्णु। और इसके बाद तो क्योंकि पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे तो विलाप कर रहे थे प्रचेतों ने। ये स्वाभाविक है, जब मूल्य वस्तु कोई मिलता है, अगर मान लीजिए रास्ते में कोई कुछ खोज जाता है एक आदमी और दूसरे तो आदमी देखता है वो मिलता है और किसी का है उसको नहीं मालूम है तो ले जाता है। तो अगर मूल्यवान सोने का अंगूठी हो या हार हो जो भी है या पैसे हो तो उसका अच्छा लगता है, लेकिन अगर फिर से खो जाता है तो दुख अनुभव करता है। वैसे ही जब कोई सदक भजन करते करते आनंद अनुभव करता है जो स्वाभाविक है वास्तव में, क्योंकि जीवात्मा भगवान के अंश है और भगवान का स्वरूप है ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद स्वरूप, उनके सत सनातन स्वरूप है, हमेशा के लिए है, चिन्मय है, ज्ञानमय है, ज्ञान के स्रोत है, आनंद परमानंद के स्रोत है, सच्चिदानंद के स्वरूप है, भगवान है, वैसे ही जीवात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप है, ये भी सनातन है, चिन्मय है, उनके पास ज्ञान है और आनंद अनुभव कर सकते हैं भगवान की सेवा में। लेकिन भगवान विभु है, असीमित है और जीवात्मा अनु है, सीमित है। भगवान बड़े हैं और जीवात्मा छोटे हैं। और जब साधक तो जानकारी ले लिया है और उनके विश्वास है, थोड़ा बहुत अनुभव किया है कि भगवान है, उनके सच्चिदानंद स्वरूप है और हम भी शरीर नहीं है अपितु आत्मा है और हमारे सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य संबंध है भगवान के साथ, तो भजन भजन करते हुए तो आनंद का अनुभव करता है। लेकिन जब तीन गुण के अंदर है तो महसूस तो किया है कि भगवान है, और कभी कभी दर्शन भी मिलता है जब आगे है, और जैसे मंदिर में भी सब भक्त लोग दर्शन मिल सकता है अच्छा विग्रह के, उनका नाम भी अच्छा अवतार है, अवतारित होता है यहाँ पर भगवान अच्छा मूर्ति के रूप में, ये उनकी विशेष कृपा है। और वहाँ के अभिन्न स्वरूप जैसे भगवान गोलोक वृंदावन में विराजमान है और अच्छे विग्रह, इसमें कोई वस्तु में अंतर नहीं है। लेकिन इस रूप में प्रकट है जिससे हम उनका दर्शन मिल सकता है, जिससे हम उनकी सेवा कर सकता है, जिससे हम का उनका स्मरण कर सकता है और ऐसे करते हुए हम आगे जा सकता है। तो दर्शन मिलता है तो आनंद का अनुभव करता है भक्त लोग। लेकिन जब दरवाजा बंद हो जाता है और दूसरी जगह पे जाना है कुछ दूसरे कार्य करने के लिए सेवा भी, तो उसी समय तो दर्शन नहीं मिलता है, तो उसी समय भी रहा भी आ सकता है। वो जो आ गया है, जब भगवान अप्रकट हो जाता है तो रोता है। तो यहाँ पर भी ये प्रचेतों ने देखा उनके सुंदर स्वरूप, श्यामल रंग के घनश्याम, श्याम सुंदर कृष्ण के स्वरूप है, वैसे ही विष्णु उनके श्यामल रंग के है, सुंदर स्वरूप, पीतम्बर वेश, चतुर्भुज रूप, चक्र पद्म गदा उनके हाथ में है, बहुत सुंदर स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। तो आनंद अनुभव किया है, परमानंद अनुभव किया है, लेकिन इसके बाद अप्रकट हो गया, अंतर्धान हो गया, तो विरहाभाव में तो आ गया, तो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। तो लेकिन फिर भी तो आगे तो जाना है, जैसे यहाँ पर ले किया है। लेकिन ये भी है कि इससे हम समझ सकते हैं कि माया का प्रभाव बहुत शक्तिशाली है, माया ये भी भगवान, ये बाह्यरंग शक्ति अंतरंग शक्ति के विस्तार रूप है, मूल शक्ति श्रीमती राणी दुर्गे देवी बाह्यरंग शक्तियों के विस्तार रूप है। लेकिन ये भी कृष्ण की दासी है और उनके यहाँ पर भौतिक जागरण उनकी सेवा है, तो ये भी शक्तिशाली है माया देवी। तो दैवी येष माई गुण माए दरात्या, तो तीन गुणों से परे रहना, आध्यात्मिक अवस्थ पर रहना हमेशा के लिए आसान नहीं है, मुश्किल है वास्तव में। और यहाँ पर साक्षात दर्शन मिला है और बहुत ये उल्लेख किया है, तो अलग अलग स्कंद में अलग अलग यहाँ पर के भगवान की लीला और उनके भक्त के बीच में लीलाएं में उल्लेख किया है। जैसे ध्रुव महाराज भी साक्षात दर्शन मिल गया, लेकिन फिर भी एक प्रकार से फिर भी मोहित हो जाता है कभी कभी। जैसे यहाँ पर प्रचेतन ने भी क्रोधित होकर जब देखा कि इस है ना तो जल में थे, और जब निकल गया और देखा कि पूरा वहाँ पर दुनिया में पृथ्वी पे बहुत सारे वृक्षों थे, तो कि देखभाल को नहीं करता था। उनके पिताजी राजा ये भी वन में चले गया, क्योंकि है ना चार आश्रम है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ। जब वृद्ध अवस्था में पहुंचने वाला है तो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, सब कुछ छोड़ना है, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। उनके इंतजार ना किया प्रचेतों के, वो सौंप दिया है ना उनके मंत्री को, और ये इनके इंतजार कर रहे थे उनके राजा के पुत्र के मंत्रियों ने। तो लेकिन नक्षत्र से नहीं हुआ देखभाल पृथ्वी के, तो क्रोधित होकर सब वृक्षों तो इसका विनाश किया, उनकी शक्ति से आग निकल गया। यानी अगर कोई तपस्या कर रहा है तो उनके पास शक्ति आ जाती है और बहुत कुछ कर सकते इस शक्ति से। तो लेकिन ये जरूरत नहीं था। और जैसे शास्त्र के अनुसार वृक्ष के जो सब वृक्ष का विनाश करना तो ठीक नहीं है, जरूरत है। फल देता है वृक्ष, छाया देता है, वातावरण के लिए जरूरत है। लेकिन कभी कभी जब पुराने हो जाता है तो कठिन भी है, और जब ज़्यादा है थोड़ा सा कट सकता है, जरूरत है। जैसे जानवर भी जब ज़्यादा है तो उसका हत्या भी कर सकते हैं राजा, जब ज़्यादा है शस्त्र के अनुसार, लेकिन ज़्यादा ना है और इंद्रिय तृप्ति के लिए ना है। तो इसलिए तो यहाँ पर जब ब्रह्म जी ने देखा कि सब वृक्ष को विनाश करने वाले थे, तो वहाँ पर आ गया और उनको समझाया कि ये तो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो जो बारे है जो आगे है, कभी कभी भी उनकी गलतियाँ भी हो जाती है, इसलिए हमेशा विनम्र भाव में रहकर शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में चलना है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हम ठीक से सब कुछ कर सके, तन मन वाचा अच्छे तरह से। तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से भी प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हम अच्छे तरह से सोच सकता है, निर्णय ले सकता है और बोलना भी। भगवान का गुणगान तो ही करना है, ये सर्वश्रेष्ठ है, वाणी के कर्तव्य है भगवान का गुणगान करना है। प्रसाद पाना भी है, ये भी जरूरत है, लेकिन इसे और जरूरत है भगवान का गुणगान करना है, जप करना है, नाम कीर्तन करना है, उपदेश भी देना है दूसरे को। कभी कभी भी तो दूसरे को भी समझाने के लिए भी जोर से भी बोल सकता है पिताजी या गुरुजान, लेकिन फिर भी बस में रखना चाहिए वाणी भी। विशेष करके जब शिष्य है, जो बच्चे जब गुरुजान के सामने है, विनम्र भाव में रहना चाहिए, बोलना चाहिए, जोर से बोलना उचित नहीं है। जैसे ठाकुर जी के सामने भी बहुत बार हमको पुजारी को बोलना है, ठाकुर जी के सामने जोर से बोलना उचित नहीं है, तो गुरुजन के सामने जोर से बोलना उचित नहीं है। विनम्र भाव में रहना चाहिए, और मृदुल वाणी से बात करना है, पूछताछ करना है जिससे हम आगे जा सकता है, प्रश्न पूछना है। तद्विनी परिप्रश्न न परिप्रश्न तद्विनी परिप्रात न परिप्रश्न न सेवया। विनम्र भाव में रहते हुए प्रश्न पूछना चाहिए गुरु जान से, बात करना चाहिए, अन्यथा अपराध हो जाता है। और शरीर से भी दूसरे की अपराध नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अपराध नहीं करता है। तो ऐसे करते हुए तो भजन करना चाहिए, ऐसे करते हुए आगे जा सकता है। तो यहाँ पर ये चैतन्य ने क्रोधित होकर तो गलत काम किया है, लेकिन ब्रह्मा जी को समझाए कि ठीक नहीं है, तो इसके बाद छोड़ दिया। और उनके आदेश अनुसार तो फिर से भजन किया, और इसके बाद फिर भी राजा का पालन किया है। और यहाँ पर भी जैसे उल्लेख किया है कि उनके आदेश के अनुसार और ये वृक्षों के अधिष्ठाता देव ये प्रस्तुत किया, ये कंदू महाराज एक साधु थे, योगी थे, और प्रमलोचा ये अप्सरा थी। इंद्रदेव ने भेज दिया कंदू महाराज के तपस्या तोड़ने के लिए, और सफल हो गए। और इसका फलस्वरूप कन्या उत्पन्न हुई, उसका नाम है मरीषा। तुमको दे दिया ये वृक्षों के अधिष्ठाता देव, प्रचेत को दे दिया, सौंप दिया ये कन्या। और तो ब्रह्मा जी के उपदेश के अनुसार तो ग्रहण किया, और इसके बाद तो राज्य का शासन भी किया था, और अच्छे तरह से भजन किए थे फिर से। और आगे भी उल्लेख किया है कि एक दूसरे साधु के पास भी गया, उनसे भी आदेश लिया है। तो यहाँ पर इस प्रसंग में तो देख सकता है, सीख सकता है कि हम हमेशा साधु के गुरुजान के सन्निध्य में रहना चाहिए, उनके अनुगत्य में हमको सदन भजन करना चाहिए, हमको सेवा करना चाहिए, तब आगे जा सकता है। तो सर्वश्रेष्ठ है उपदेशक, तो ये तो दीक्षा गुरु है, साधक के दीक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु शिक्षा भी देता है, और उनके अनुसार हमको चलना है। लेकिन गुरुजान तो प्रचार के लिए जाता है, और अप्रकट भी हो जाता है, जर समय हमसे पहले अप्रकट हो जाता है, तब शिक्षक गुरु के पास जा सकते, जाना ही है वास्तव में। और अगर दीक्षा गुरु प्रचार के लिए जाता है तो शिक्षक गुरु के अनुगत्य में हमको चलना है। और जैसे चैतन्य चतुर्मृत में भी उल्लेख है, अगर कोई भाव अवस्था में भी हो ये उत्तम अवस्था है, भाव अवस्था में भी हो। और भाव अवस्था के वस्तु में तीन अवस्था है, कनिष्ठ उत्तम, मध्यम उत्तम और उत्तम उत्तम। तो भाव अवस्था के अगर कोई कनिष्ठ उत्तम है, कनिष्ठ उत्तम के अवस्था पर है, अगर उत्तम उत्तम अवस्था पर पहुंचना है तो उत्तम उत्तम वैष्णव के पास जाना है, ये उल्लेख है। तो भाव भक्त प्रेमी भक्त के पास जाना है, जिनके पास कृष्ण प्रेम है, जो उत्तम उत्तम वैष्णव है, उनके सन्निधि में रहकर उनके आदेश अनुसार भजन करते हुए सेवा करते हुए उत्तम उत्तम अवस्था पर प्रवेश कर सकता है। तो जब दीक्षा गुरु ना आया तो शिक्षा गुरु के पास जा सकता है, उनके आदेश अनुसार भजन करना है, सेवा करना है। और वास्तव में ये सब तो अखंड गुरु तत्व है। दीक्षा गुरु एक रूप से एक है उनके भी, लेकिन फिर भी अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग वैष्णव हो, फिर भी कोई वेद भी हो, लेकिन फिर भी अवेद भी है, दीक्षो शिक्ष गुरु। हाँ, दीक्षा गुरु तो संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन वास्तव में यह भी है कि तो नित्य संबंध है जीवात्मा भगवान के साथ, लेकिन सुप्त रूप में है, और दीक्षा गुरु की कृपा से जागृत हो जाती है संबंध, और फिर से भगवान की सेवा कर सकते हैं, उनके माध्यम से कृष्ण की सेवा कर सकता है बद्ध जीव, और उनके आदेश के अनुसार चलते हुए तो सिर वस्त्र पर पहुंच सकता है। तो एक दीक्षा गुरु होना चाहिए जो संबंध स्थापित कर रहा है फिर से, और उनकी कृपा से आगे जा सकते, उपदेश भी देता है, आध्यात्मिक नाम देता है, उपनयन संस्कार भी उनकी कृपा से होता है, जिससे ठाकुर जी की सेवा कर सकता है, मंदिर में यज्ञ अनुष्ठान भी कर सकता है, अच्छे तरह से शास्त्र का अध्ययन कर सकता है गुरु की कृपा से। लेकिन इसके बाद शिक्षा गुरु भी है, तो ये भी शास्त्र के अनुसार, तो चैतन्य चतुर्थ के अनुसार दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु कृष्ण के रूप और स्वरूप के प्रतिनिधि है। तो जैसे कृष्ण के रूप और स्वरूप, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी अंतर भी है, अंतर नहीं और अंतर भी है। जैसे कृष्ण के रूप, जैसे मंदिर में श्याम सुंदर राधे श्याम रूप देख सकता है, लेकिन उनके स्वरूप, उनके स्वभाव क्या सोचता है कृष्णा जब रानी के साथ है, अब देख सकता है नहीं देख सकता है, समझ सकता है? शिव जब आगे है तो तब समझ सकता है, इसलिए गुरु के पास जाना है, ये बताएंगे कृष्ण क्या सोचता है, उनके स्वभाव क्या है। तो इसमें भी उल्लेख है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु एक है, लेकिन फिर भी कोई अंतर भी है। जो जैसे कृष्ण के रूप या दीक्षा गुरु है, संबंध स्थापित कर रहा है कृष्ण के साथ, इसके बाद शिक्षा गुरु कृष्ण के स्वरूप के प्रतिनिधि है। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु भी है, उपदेश देता है, जिससे हम कृष्ण का स्वभाव, कृष्ण क्या सोचता है, उसके क्या इच्छा, ये समझ सकता है शिक्षा गुरु की कृपा से। तो दीक्षा गुरु एक होना चाहिए, लेकिन ये भी शिक्षा गुरु है, लेकिन अलग अलग शिक्षा गुरु भी हो सकता है। लेकिन शिक्षा गुरु जो दीक्षा गुरु बोलता है, ये तो उनको बोलना है, तो ये वास्तविक शिक्षा गुरु है, इसलिए कोई अंतर नहीं है, दीक्षो शिक्षा गुरु है। सहायता जैता है शिष्य को, भक्त को, जिसे आगे जा सकता है, जिसे कनिष्ठ अवस्था से मध्यम अवस्था पर पहुंच सकता है, और मध्यम अवस्था से उत्तम अवस्था से उत्तम अवस्था तक पहुंच सकता है, और यहाँ पर भी कनिष्ठ उत्तम मध्यम उत्तम तक और उत्तम उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है उनकी कृपा से। इसलिए हमेशा शुद्ध वैष्णव के संग में रहना चाहिए, और समझना चाहिए कि हम तुच्छ है, और कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, वैष्णव की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, अन्यथा आगे जाना संभव नहीं है। अपने प्रयास से आगे जाना, तो प्रयास तो करना ही है, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, प्रयास अच्छे तरह से करना चाहिए गुरु के आदेश अनुसार, लेकिन कृपा के बिना आगे नहीं जा सकता है। प्रयास करके गुरु की कृपा मिल सकता है, तब और आगे जा सकता है, तब भगवान की कृपा भी मिल सकता है। तब उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। तो ऐसा होता है, भजन जब करता है गुरु गौरांग की कृपा मिल सकता है तब आगे जा सकता है, तब और कृपा मिल सकता है तब और आगे जा सकता है। तो हमको देखना है कि हम आगे जाता है। जैसे विद्यालय में प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी, तो पिताजी को देखना है कि आगे जाता है, पिताजी को देखना है कि बच्चा स्कूल में जाता है, किताबें का अध्ययन करता है, ठीक से सब कुछ करता है, अच्छे मार्क्स मिलता है, देखना है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं मिलता है तो कुछ करना चाहिए, है ना, उनको बताना है अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलता है, अच्छा शायद थोड़ा सा सहयोग देना है। तो देखना है कि आगे जाते प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी ऐसे करके आगे जाते हुए तो सेकेंडरी स्कूल में, इसके बाद हाई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर पहुंचता है। तो वैसे ही गुरुजन भी देखता है कि शिष्य आगे जा सकता है, और हम खुद भी देखना है कि हम आगे जाता है। जैसे बच्चे तो भी उनको भी देखना है, जब छोटा है तो ज़्यादा नहीं समझ सकते, लेकिन बाद में जब यूनिवर्सिटी में जाता है उसी समय पिताजी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, अध्यापक भी कुछ नहीं बोलता है, खुद मेहनत करना चाहिए उसी समय विश्वविद्यालय में, तब PhD मिल सकता है। तो वैसे ही जब आगे जाता है तो खुद देखना है कि हम आगे जाते हैं या नहीं है, और जब देखता है कि जद नए आ गया है तो गुरुजन से पूछना चाहिए, जिससे हम अच्छे तरह से आगे जा सकता है, क्योंकि कृष्ण जी ने प्रवेश करना ही तो है, लेकिन ये आसान नहीं है। थोड़ा बहुत जाप करते हुए, थोड़ा सा प्रसाद पाते हुए, थोड़ा सा पढ़ते हुए, थोड़ा सा सेवा करते हुए, थोड़ा बहुत इससे नहीं होता है। अच्छे तरह से भजन करते हुए, अच्छे तरह से सेवा करते हुए, रोते हुए, तब धीरे धीरे उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। उत्साह के साथ, उच्च निश्चय दर्यात निष्ठ होने चाहिए, उत्तम अवस्था पर पहुंचना है इस जीवन में तो उत्साह हमेशा होना चाहिए, निष्ठ होने चाहिए, इसके बाद धैर्य भी होने चाहिए। तद तक कर्म प्रवर्तनात् हमेशा सर्वभजन करना है, असत्संग त्याग सतोवृत्ते, साधु के संग में रहना चाहिए। तद भक्ति प्रसिद्ध थी, सिद्ध वस्त्र पर पहुंच सकता है। तो और परीक्षा होता है, तो परीक्षा अलग अलग परीक्षा है, तो इसका पार करना चाहिए। हाँ, और जब आ गया है तो मतलब जैसे स्कूल में भी विद्यालय में छोटे बच्चे की परीक्षा तो आसान है, लेकिन जब विश्वविद्यालय में है तो आसान नहीं है, बहुत मेहनत करके पास कर सकते, पार कर सकते परीक्षा। लेकिन जब प्रयास कर रहे हैं, साधु के संग में है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सब परीक्षा पास कर सकते हैं, सब समस्या जो आ जाता है तो पार कर सकते भगवान की कृपा से। लेकिन साधु के संग में होना चाहिए, उनके उपदेश के अनुसार चलना है। यहाँ पर ब्रह्मा जी आ गया, अधिगुरु है, उनके सहायता देने के लिए। हरे कृष्णा।